का था, रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे हैं अलका सैनी की लिखी कहानी कसक। गरिमा का विवाह हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। इस बार उसके मन की इच्छा थी कि सभी घर वाले आने वाली दिवाली उसके नए घर में एक साथ मनाएं। नए घर में उनकी यह पहली दिवाली थी, वह उसे यादगार बनाना चाहती थी। उसके मन में दिवाली की तैयारियों को लेकर इस बार कुछ खास नई उमंग, नया जोश और नया उत्साह भरा था। उसने बड़े प्रेम से सभी रिश्तेदारों को दिवाली मनाने के लिए शाम के समय आने के लिए आमंत्रित किया था। अपने मायके वालों को उसने खुद बड़े चाव से आमंत्रित कर लिया था, और ससुराल में जिस किसे भी बुलाना हो उसका जिम्मा उसने मनीष को दिया था। शाम में सबके साथ साथ भोजन के लिए उसने मन ही मन काफी योजना बना ली थी। इसके लिए उसने मनीष को कहा था, आप जिस किसी को भी दिवाली के लिए बुलाना चाहते हो खुशी से बुला लो, हमारे नए घर की पहली दिवाली है। सब लोग साथ में मिलकर इस बार बड़े धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। मनीष ने बड़े प्यार के साथ हामी भर दी और कहा, ठीक कह रही हो गरिमा, अभी ऑफिस में कुछ देर का कुछ जरूरी काम है, फिर मैं वापस आकर सभी को या तो फोन कर दूंगा या फिर खुद जाकर निमंत्रण देकर आऊंगा। आखिर हमारी खुशी में सबकी हिस्सेदारी होना भी तो जरूरी है, तभी तो खुशी का मजा दुगना हो जाता है। मनीष की ये सब बातें सुनकर गरिमा का जोश और भी बढ़ गया, और वह मन ही मन बड़ी खुशी से शाम की योजनाएं बनाने लगी। शाम के खाने के सारे व्यंजनों की एक लिस्ट उसने तैयार कर ली और मन ही मन सोचने लगी कि वह शाम को कौन कौन से पटाखे छोड़ेगी। पिताजी और माँ को बड़े वाले पटाखे नहीं देगी, उनके लिए वह खास तौर पर छोटे पटाखे खरीदेगी। वह ये सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी कि आज 10 साल के बाद उसके ससुराल और मायके वाले साथ में मिलकर दिवाली मनाएंगे। वह साथ साथ जल्दी जल्दी सब तैयारियां भी कर रही थी और साथ में मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। उसे एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। धीरे धीरे वह अपनी पुरानी यादों में खो गई। उसके ससुराल वाला घर उसके ऑफिस से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां से उसे अपने ऑफिस तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाता था। मनीष और गरिमा का ऑफिस पास पास में ही था, इसलिए वह ऑफिस के लिए साथ साथ ही आते जाते थे। उसका ससुराल वाला घर जहां से उसकी डोली उठी थी शहर के पास एक गांव में था, जो कि काफी पुराना बना हुआ था। यद्यपि गरिमा ने अपना बचपन शहर में बिताया था, वह शहर के खुले माहौल में पली बड़ी थी, फिर भी उसने खुद को काफी मेहनत से ग्राम्य वातावरण के अनुसार ढाल लिया था। क्या गरिमा के लिए सब कुछ इतना सहज था? नहीं, उसके घर में भी कई बार छोटी छोटी बात पर मनमुटाव हो जाता था। वह तनाव ग्रस्त रहने लगती थी। वह तो अच्छा था कि वह नौकरी करती थी और ऑफिस में आकर कामकाज में व्यस्त हो जाने के कारण वह घरेलू छोटी मोटी बातों को भूल जाती थी। कभी कभी मनीष भी कहने लगता था। गरिमा, वास्तव में मुझे इस बात की बहुत हैरानी है कि तुमने इतनी जल्दी खुद को घर के वातावरण के अनुरूप ढाल लिया है और सबका दिल भी जीत लिया है। गरिमा को मनीष की ये झूठी तारीफ अच्छी नहीं लगती थी। उसके प्रतिउत्तर में वह कहने लगती थी, मनीष तुम क्या समझोगे किसी औरत के दिल की बात। यहां सुबह जल्दी उठकर घर के सारे कामकाज निपटाओ, बच्चों को नहला धुला कर स्कूल के लिए तैयार करो, सबके लिए नाश्ता बनाओ, लंच के टिफिन पैक करो और बाकी कई तरह के छोटे मोटे काम हो जाते हैं। अगर ये सब काम मैं ना करूं तो क्या घर वाले मुझे पसंद करेंगे? मनीष को इस तरह के उत्तर की उम्मीद नहीं थी। उसे लगने लगा कि गरिमा के मन में कहीं ना कहीं कोई पीड़ा छुपी है। मायके में वह घर की लाडली बेटी थी। घर में छोटा होने के कारण सब उसे ज्यादा ही प्यार देते थे और माँ के होते उसे कोई काम करना ही नहीं पड़ता था। कभी वह करना भी चाहती तो माँ उलाहना देते हुए कहती, बेटी अपने ससुराल जाओगी तो वहां तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा सब काम घर का, और तुम्हें तो सब काम आता ही है। यहां हमारे होते तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद जब वह गांव आई तो शुरू शुरू में घर का सारा कामकाज करते हुए उसे चक्कर आने लगते थे। वह भीतर ही भीतर खुद को असहाय महसूस करती थी। फिर भी उसने खुद को बड़ी मेहनत से संभाल लिया था। कभी कभी घर के और ऑफिस के कामकाज को लेकर उसे लगने लगा था कि वह एक मशीन बनकर रह गई है। हर रोज वही दिनचर्या, सुबह जल्दी से उठकर घर के सारे काम निपटाकर ऑफिस जाओ, फिर शाम को ऑफिस से वापस थक हार कर फिर से घर के काम में जुट जाओ। कई बार तो वो इतनी थकी होती थी कि जब सब लोग शाम को चाय पीने के लिए उसके आने का इंतजार करते हुए मिलते थे तब वह अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती थी। सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर वह छोटे मोटे बाकी सब काम निपटाती थी। कभी उसकी सास तरस खाकर कहती थी, बहू आज चाय मैं बना देती हूं, तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आज। मनीष को ये बात कहां सहन होती। वह तो अपनी पत्नी को आदर्श बहू के रूप में जो देखना चाहता था, और तपाक से बीच में बोल पड़ता था, मां रहने दो ना, गरिमा बना लेगी चाय, ऑफिस में कोई हल थोड़ी ना चला कर आई है या पत्थर थोड़ी ही तोड़े हैं। आप पीछे से भी सारा दिन घर अकेले ही संभालती हो, अब इसे करने दो। वह मन ही मन कई बार सोचती कि क्या वह मनीष की तरह इंसान नहीं है। वह दोनों साथ साथ ही तो ऑफिस आते जाते हैं और मनीष आते ही सीधे टीवी के आगे आराम से बैठ जाते हैं। ऑफिस से घर लौटकर क्या उसके नसीब में फुर्सत के कुछ क्षण भी नहीं है। आते ही फिर से कोल्हू के बैल की तरह काम में जुट जाओ, बच्चों के बैग संभालो, यहां तक कि बच्चों का होमवर्क करवाने की जिम्मेदारी भी उसी की ही थी। कामकाज निपटाकर वह रात को ही विश्राम कर पाती थी। उसे रह रहकर वह दिन याद आने लगा जब उसने अपनी बेटी आयना का दाखिला शहर के सबसे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में करवाने की बात घर में छेड़ी थी। उसके इस बात पर घर में खूब हंगामा हुआ था। मनीष ने चिल्लाकर कहा था, क्या जरूरत है आईना का दाखिला कॉन्वेंट स्कूल में करवाने की? यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है, स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चा पढ़ने वाला हो तो कहीं भी पढ़ सकता है और अपनी जिंदगी सवार सकता है। तुम और मैं क्या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं? तो क्या अच्छा खासा कमा नहीं लेते? गरिमा ने मनीष के प्रत्युत्तर में कहा था, हमारा जमाना और था, अब समय बदल गया है। मेरे बच्चे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलें और अच्छे स्कूलों के एटिकेट सीखें। मैं नहीं चाहती कि वह गांव के किसी छोटे से स्कूल में अपना समय बर्बाद करें और अपना भविष्य खराब करें। बहुत देर एक लंबी बहस के बाद मनीष ने गरिमा की बात मान ली। उस समय गांव से कॉन्वेंट स्कूल तक जाने के लिए किसी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध नहीं था और हर रोज स्कूल तक छोड़कर आना मुमकिन नहीं था। मजबूरन उन्हें शहर में एक मकान किराए पर लेना पड़ा था। इस सब के लिए गरिमा की सहेली और घर वालों को भी मनीष को काफी समझाना पड़ा था। तब जाकर कहीं बात बन पाई थी। यह मकान शहर के बीचों बीच था, इसलिए यहां से उनका ऑफिस और आईना का स्कूल दोनों पास ही थे। आईना मात्र 10 मिनट में घर से अपने स्कूल तक पहुंच जाती थी। सप्ताह में केवल एक दिन रविवार की छुट्टी होती थी। उस दिन गरिमा सोचती थी कि हफ्ते भर के बकाया काम निपटा लेगी। हर रोज तो भाग दौड़ में बाकी काम के लिए समय ही नहीं मिलता था। बच्चों के स्कूल बैग धोने से लेकर घर की साफ सफाई तक वह सारे काम रविवार को पूरा करना चाहती थी। मनीष शनिवार की शाम से ही गांव जाने की रट लगा लेते थे ताकि वह रविवार का सारा दिन अपने माता पिता के साथ बिता सके। इस चक्कर में उसके हफ्ते भर के सारे काम ज्यों के त्यों बाकी रह जाते थे। आईना के स्कूल का बचा हुआ होमवर्क भी ऐसे ही रह जाता था। बीच बीच में आईना के स्कूल की अध्यापिका ने उसके स्कूल की कॉपी में नोट लिखकर भी भेजा था कि वह पढ़ाई में कमजोर है और उसका स्कूल का होमवर्क भी पूरा नहीं होता है। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उन दोनों को स्कूल में एक बार बुलाकर समझाया भी था। देखिए, अगर आपने अपने बच्चे को हमारे स्कूल में पढ़ाना है तो उसकी हर चीज पर ध्यान देना होगा। स्कूल के काम से लेकर साफ सफाई तक बाकी बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा। बेहतर होगा, अभी भी समय है, आप उसकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाध्य होकर उसका नाम मुझे स्कूल से काटना पड़े। गरिमा ने प्रधान अध्यापक की बात को काफी गंभीरता से लिया। उसने मनीष से काफी चिंतित होते हुए कहा, देखो मनीष, माता पिता होने के नाते हम दोनों का ही फर्ज है कि हम बेटी पर ध्यान दें, वरना इतने बढ़िया स्कूल से निकाले जाने पर बच्चे के नुकसान के साथ साथ बदनामी भी होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने माता पिता को अपने पास ही रहने के लिए बुला लो। नहीं तो बार बार गांव जाने से बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है और कल को बच्चे बड़े होकर हमें ही कसूरवार ठहराएंगे। मनीष ने गरिमा की बात को ध्यान से सुना पर टालने के अंदाज में कहने लगा, गरिमा, तुम्हारी बात को तो मैं समझ रहा हूं, पर माँ बाबूजी को हमेशा से खुले वातावरण में रहने की आदत रही है,
और उनका यहां पर मन भी नहीं लग पाएगा। शहर में तो कोई खास एक दूसरे से बात भी नहीं करता, ऐसे में उनका मन घुट जाएगा। तब से लेकर मनीष गांव महीने में एक बार ही जाने लगे। एक दिन आईना के स्कूल का वार्षिक उत्सव चल रहा था और उसमें आईना ने भी भाग लिया था। उस दिन मनीष सभी को लेकर गांव जाना चाहते थे, परंतु गरिमा ने आईना के कारण गांव जाने से मना किया, तो मनीष अकेले ही बेटे अंकित को लेकर गांव चले गए थे। गरिमा ने तब भी सब्र का घूंट पी लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए चुप रहना ही उसने बेहतर समझा। वार्षिकोत्सव पर उसे मनीष और बेटे की बहुत कमी खल रही थी। सब लोग आईना को उसके पिता के बारे में पूछ रहे थे कि उसके पापा उसका प्रोग्राम देखने नहीं आए। ये सब बातें सुनकर गरिमा को और भी बुरा लग रहा था। उसका मन बहुत उदास हो गया था, ये सोचकर कि क्या उसकी भावनाओं का कोई अर्थ नहीं है, वह बस इस्तेमाल करने की कोई वस्तु है क्या, वह एक मशीन बनकर रह गई है। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो गई, पर बड़ी हिम्मत से उसने खुद को सबके बीच संभाला था। अपनी तनख्वाह की बचत के अलावा घर के खर्च की कटौती से जो पैसे उसने इकट्ठे किए थे, उन पैसों से उसने शहर में हाउसिंग बोर्ड के मकान के लिए आवेदन पत्र भरा था। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसका नंबर उसमें आ गया था। उसने भगवान से इसके लिए कई तरह की मिन्नतें भी मांगी थी, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे सारी किश्तें चुकाकर वह मकान उनके नाम हो गया था। बड़े अरमानों से उसने उस घर की एक एक वस्तु संजोई थी। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का गला घोंट कर उसने एक एक पैसा अपने खून पसीने की कमाई से जोड़ा था। उसने अपने जीवन काल में अनेक संघर्ष देखे थे। नए घर के पैसे चुकाते चुकाते कुछ पैसे जब कम पड़ गए थे, तो उसकी मां ने उसे आश्वासन दिया था यह कहते हुए, गरिमा घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कुछ पैसे कम पड़ेंगे तो मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगी, वह मदद कर देंगे। आखिर हम तेरे माँ बाप हैं, कोई गैर तो नहीं। अगर लड़की की शादी कर दी तो ये मतलब थोड़ी है कि अब हम तेरे बारे में सोचेंगे नहीं। और घर कौन सा रोज रोज खरीदा जाता है, जब तक हम बैठे हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमें पैसों का क्या करना है, कोई साथ थोड़ी ले जाएंगे मरने पर। मां की बातें सुनकर गरिमा की आंखें भर आई और सुबकते हुए कहने लगी, मां तुम भी कैसी बातें करती हो, मेरे सामने ये मरने की बातें मत किया करो, आप तो मेरी ताकत हो। गरिमा को ऐसा लग रहा था मानो वह कोई सपना देख रही हो। आंखें पुरानी भावुक यादों के तरोताजा होने पर भर आई थीं। आंखों पर हाथ फेरते हुए वह वर्तमान में लौट आई। उसे याद हो आया, आज वह अपने घर में पहली दिवाली सभी सगे संबंधियों के साथ मनाएगी। उसके दिल की ये हार्दिक इच्छा थी। बहुत पहले से ही उसने इस उपलक्ष में कई तरह की तैयारियां करनी शुरू कर दी थीं। ऑफिस से घर लौटते समय उसने तरह तरह के पटाखे, फल, मिठाइयां, पूजा का सामान, रंग बिरंगी मोमबत्तियां आदि एक एक जरूरी वस्तु अपनी सहेलियों से पूछ पूछ कर खरीद ली थी। दिवाली के दिन जब वह शाम 4 बजे घर लौटी तो देखा कि मनीष पहले से ही घर पर मौजूद थे। यह देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। वह सोच रही थी कि शायद दिवाली की तैयारियों के कारण मनीष आज उससे भी पहले घर लौट आए हैं। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि वह खुद जाकर इस बार आस पड़ोस में और अपनी खास खास सहेलियों को मिठाई बांट कर आएगी। वह तरह तरह की कल्पनाओं में खोई हुई थी। बहुत उत्साहित होते हुए उसने मनीष से पूछा, आपने माँ बाऊजी और अपने भाइयों को यहाँ आने का न्योता दे दिया है ना? मनीष के चेहरे के हाव भाव बदल गए। मुरझाए हुए सा वो कहने लगा, गांव में मौसी जी आई हुई हैं, इसलिए माँ बाबूजी तो नहीं आ सकते और उन्होंने हमें ही वहां बुलाया है ताकि सब एक साथ परिवार के लोग लक्ष्मी पूजा कर सकें। गरिमा का चेहरा देखते ही बनता था। दुखी मन से उसने मनीष से कहा, मैंने तो सबको यहां आने के लिए कल शाम को ही बोल दिया था और ये बात तुम्हें भी तो पता है। कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है, सब घर के ही तो लोग हैं। फोन करके मना कर दो कि कोई जरूरी वजह से गांव जाना पड़ रहा है। मनीष की बात सुनकर गरिमा अचंभित रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ता सा नजर आने लगा। रुआंसी सी होकर वह कहने लगी, मनीष तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया, मैं किस मुंह से उन्हें मना करूंगी। 5 बजने वाले हैं, सब लोग पहुंचने वाले ही होंगे। इस समय मना करने से उन लोगों की तौहीन तो है ही, साथ साथ हमारे लिए भी बेइज्जती की बात है। हर साल तो हम गांव जाकर ही दिवाली मनाते हैं, तो इस बार नए घर की खुशी के लिए यही दिवाली मनानी चाहिए ताकि नया घर हमारे और हमारे बच्चों के लिए सुख समृद्धि लेकर आए। और लक्ष्मी पूजन घर में करने से लक्ष्मी खुश होकर घर पर कृपा करती हैं। तुमने कभी सोचा है कि मुझे गांव जाकर दिवाली मनाने में कभी आनंद नहीं आता? मैं तो केवल रसोई तक ही सिमट कर रह जाती हूं। कभी किसी के लिए चाय बनाओ, कभी हलवा, तो कभी गरम गरम पूरी बना कर दो। गत 10 वर्षों से मैंने दिवाली पर एक भी पटाखा चलाकर नहीं देखा। तुमने तो कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया होगा। तुम्हें तो मुझे हर हाल में एक आदर्श बीवी, एक आदर्श बहू के रूप में देखना है। खुद भी तो आदर्श पति बनकर दिखाओ। गरिमा की बातें सुनकर मनीष का अहंकार जाग गया और गुस्से से लाल पीला होने लगा। गुस्से में तमतमाते हुए अपने होंठ भींचते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें अगर नहीं जाना है तो मत जाओ, पर अपने रिश्तेदारों के साथ खूब खुशी से दिवाली मनाती रहो। मैं अपने साथ बच्चों को लेकर चला जाता हूं। इस तरह की बातें मनीष के मुंह से सुनने की गरिमा ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह हताश सी होकर सोफे पर बैठ गई। गरिमा को लगा कि उसे चक्कर आ जाएगा और वह गिर जाएगी। थोड़ी देर वह सुध-बुध खोए एक जगह टकटकी लगाए देखती रही। उसे ऐसा लगा जैसे मानो काटो तो खून नहीं। अभी आप सुन रहे थे अलका सैनी की लिखी कहानी कसक। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।